ओम शांति। सभी कहाँ से आए? महाराष्ट्र सभी? मालेगांव। अच्छा, अभी इधर जो है जोधपुर के है? जोधपुर के है। मालेगांव, मालेगांव, जोधपुर और पुना, पुना वाले गए। गुड गुड। अच्छा, मालेगांव, गुड। पता है मालेगांव कौन था? पार्वती माता करके थी, जानते हो? पहले, सबसे पहले जलगांव जोन के इंचार्ज पार्वती माता थी। देखा उनको? नहीं देखा। ओम शांति। आज अच्छा एक टॉपिक रखा है, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय। अभी स्वस्थिति क्या? तो परिस्थिति तो जानते हो, कोई सामने वाला गुस्सा करता है, दुख देता है, पैसा लेता है देता नहीं है, बहुत सारे दुखों की समस्या बहुत जानते हो। लेकिन उन संसार में परिस्थिति तो है, समस्या है, विघ्न है, तो उस पर हम विजय कैसे प्राप्त करें? तो उसके लिए स्वस्थिति चाहिए। तो स्वस्थिति क्या? किसी से मुख से सुनाओ तो नहीं होगा। स्व आत्मा, तो आत्मिक स्मृति से स्थिति। पहले स्मृति चाहिए, पहले मैं आत्मा हूं, आत्मा का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। हम आत्मा इतना जानते हैं, इसलिए देखना आप रोज मुरली में एक शब्द होगा कि आत्मा समझ मुझे याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे। तो नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, तो शिव बाबा आकर के कौन सा राजयोग सिखा रहा है? दोनों में अंतर क्या है? तो वहां मन लगाने के लिए कहा स्वामी विवेकानंद ने, जो राजयोग सिखाया मन लगाओ। गीता में भी बोला मन मना भव, यहां मन नहीं, बुद्धि, दिल से याद करो, बुद्धि योग का। तब शिव बाबा आकर के हर एक बच्चों को तीसरा नेत्र देता है, बुद्धि नेत्र देता है। नहीं तो दुनिया में आज तक सारे विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान नहीं है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, मन और संस्कार, बुद्धि नहीं है। तो गीता में भी कहा है, अर्जुन को भी 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, तब नहीं मान रहा था, मैं भीष्म पितामह जिसने मुझे धनुर्विद्या सिखाई उस पर बाण कैसे चलाओ? तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपको मैं दिव्य बुद्धि देता हूं, अभी तक समझ नहीं रहे आप किसको मार रहे हो, आप कौन आपका पिता है, तो अभी तक आप शरीर को ही देख रहे हो। तब कहा मैं आपको तीसरा नेत्र, बुद्धि, दिव्य नेत्र देता हूं। तब आया है वहां गीता में, वहां तब तक, वहां तक भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। आज भी आप कहेंगे मन लगाओ, मन लगा के पढ़ो। आज तक दुनिया के सारे विश्वविद्यालय में भी एकाग्रता क्या है? फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन लगाइए। तो बुद्धि कहां? बुद्धि का ज्ञान ही नहीं। तब माताएं जब मंदिर में जाते हो तब भगवान को क्या कहते हो? भगवान इस बच्चे को मन दे दो नहीं, धन दे दो नहीं, सद्बुद्धि दे दो। तो बुद्धि का ज्ञान नहीं है, और बुद्धि के अंदर जब तक बुद्धि नहीं है, सही क्या गलत क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ में नहीं आता है। तब हमने शब्द यूज किया साइंस ने, दुनिया ने, तनाव। मन में गलत बहुत विचार चलते हैं, हां चलते हैं, मन चंचल है, तो उस मन को कौन कंट्रोल करेगा? तो लोगों ने, डॉक्टर ने क्या क्या दवाई दे दो, नींद की गोली दे दो, सो जाओ, है ना? बहुत मन में गलत विचार चलते हैं, नींद नहीं आ रहा है तो नींद की गोली देकर सो जाओ, शराब पी लो, तंबाकू खा लो। तो मन को दमन करना सिखाया, कंट्रोल करना सिखाया। तो बाबा ने आकर के, इस ईश्वर ये विद्यालय है, यहां पढ़ाया जा रहा है, तो तो क्या पढ़ाया जा रहा है, जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और वो पढ़ाने वाला सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम का, और ज्ञान सागर है, किसी ने भी जो ज्ञान आज तक नहीं सुनाया तो वो बाबा सुनाता है। तो उसके अंदर, स्व के अंदर ये तीन शक्तियां आया, स्व मैं कौन, स्वस्थिति आत्मा, आत्मा क्या, मन है। मन क्या करता है, मन दो प्रकार के विचार करता है। अब देखो आप इधर बैठे हो, देख लो क्या विचार आ रहा है, कल की, कल जाने कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कल की पुरानी पास्ट की पुराने पुराने बातें याद आएंगी, अब भी क्या करना चाहिए वो नहीं। एक एक आएगा, अरे ये फूल रखा है ये रियल है कि आर्टिफिशियल है, वर्तमान किसी को देखते उसके विचार चलेंगे, ये दो प्रकार के विचार मन में चलता है। तो मन में क्या चलता है, मन क्या करता है वो जानना पड़ेगा ना, फिर क्या सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए, उसके बाद ये विचार आया ये ठीक नहीं है ये नहीं सोचना चाहिए, ये विचार आया ये सोचना चाहिए। तो पहले देखो मन क्या सोचता है, एक पुरानी बातें याद आएंगी तो वो सोच के कोई फायदा नहीं, हो गया वो, अब भी मुझे क्या करना है, वर्तमान के लिए सोचो। मन के अंदर पुरानी बातें या इनको देखते याद आएगा, यही भाई था वो, दो साल पहले इसने मुझे बहुत गुस्सा किया था, याद आएगा नहीं ऐसे नहीं, हां दो साल पहले ना, अभी नहीं, अभी तो चेंज हो गया है। तो पुरानी बात छोड़ दो, क्या छोड़ना है और क्या समझना है, करना है अभी, तो ये पुराना हो गया छोड़ दो, अपने आप को समझाना पड़ेगा। ये कौन समझाएगा वो बताओ, अगर आपको किसी को देखते ही मेरे मन में क्या विचार है आपको तो पता नहीं ना, मुझे पता है, तो मेरे मन में अगर आपको देख के गलत विचार आया तो मेरे मन को कौन समझाएगा। हां ये समझ चाहिए, तो बुद्धि मन को समझाती है। अब बुद्धि कैसे समझेंगे, शराब पीने वालों को बुद्धि कहेंगे पी लो, हाँ सब लोग पीते हैं, घर में पिताजी भी पीता था और भी पीता था, है ना, तो कौन कहेगा। अब आया सत्संग से सदगति, जो रोज सत्संग सुनता है, अब सत्संग भी क्या है, रामायण महाभारत गीता क्या क्या है, तो सत्य क्या है, तो ये सत्यम शिवम सत्य भगवान आके जो ज्ञान सुनाता है तो उसको कहेंगे सत्य। अभी सत्य की भी बात पता होना चाहिए, दूध कहीं भी ले लो मिलता है, सफेद ही होगा ना, काला लाल नहीं होगा, लेकिन इनके पास जो दूध मिलता है इसके अंदर पानी है, इधर दूध जो मिलता है वो प्योर है। तो आप कहेंगे कहीं आशाराम बापू का है, कोई और किसका सत्संग है, कहीं भी जाओ कहीं भी सत्संग सुन जाता हूं मैं, सत्य है वो तो चलेगा ना, तो कैसे कहेंगे ब्रह्मा कुमार इसके अंदर ज्ञान जो वो सत्य और ये गलत है, ये दूध देता है ये ठीक नहीं है, कैसे कहते हो आप, पतला दूध है इसलिए खराब है, नहीं तो कुछ मापदंड होना चाहिए ना, कैसे इसके अंदर आपने कहा पानी है और ये प्योर दूध है, साइंस ने थर्मामीटर बनाया, देखते हो इसके अंदर पानी कितना दूध कितना, तो आप यहां बता सकते हो ये सत्य ज्ञान है और ये असत्य ज्ञान है, रामायण है महाभारत है गीता है और कुछ चल रहा है, बहुत सत्संग चलता है, तो आप कैसे कहते हैं ये सत्संग ही सही है और ये गलत है, तो वो भी भगवान का ही ज्ञान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम ने सुनाया, तो कैसे नहीं कहेंगे आप, कुछ प्रूफ चाहिए ना, कैसे कहेंगे ये सत्य और वो गलत, जैसे वहां आपने दूध सही गलत के लिए थर्मामीटर दिखाया, मापदंड है साइंस ने बनाया, तो यहां कुछ ऐसा है तो ये ज्ञान सही है कि नहीं है देख सकते हो। बुद्धि से वो आपकी बुद्धि कहते, वो तो उनकी बुद्धि कहते बहुत अच्छा है, वो भगवान श्री कृष्ण सुनाता है, तो आप कैसे क्या उसके लिए चीज चाहिए ना, ये कैसे कहते हो ये सही है और ये गलत, अनुभव से वो आपका अनुभव सभी को होना चाहिए, अगर दूध है सब अच्छा है पानी वाला तो सब भी कहेंगे इनके इस दूध के अंदर पानी है, सब भी कोई भी ले जाओ कहीं भी ले जाओ वो थर्मामीटर सभी जगह काम करेंगे, तो यहां भी आप कहेंगे कहीं जाओ सब लोगों ने कहना चाहिए ये ब्रह्मा कुमार इसका ज्ञान प्योर, ऐसा है नहीं है, तो उसका क्या मापदंड कौन सा है? कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए ना। हाँ, इसलिए और कैसे जो अच्छा लगता है, तो जो यहां कोई बाइबल पढ़ो, कोई कुरान पढ़ो, कोई कबीर का ज्ञान सुनो, जिसको जो अच्छा लगता है ठीक है। व्यंजन ने सही कहा, जिसको जो अच्छा लगता है वो ज्ञान सही है, ठीक है ऐसा। और बताओ सत्य ज्ञान क्या असत्य क्या? जी तो यहां तो निराकार तो देख के द्वारा ही पढ़ाएगा ना उसे निराकार सीधा तो नहीं पढ़ाता है। हाँ, जैसे कुरान जो सुनाया उसने कहा कि फरिश्ता आके सुना रहा है ना, तो उनको भी कहता अल्लाह भगवान आके सुनाता है, तो यहां भी कहेंगे भगवान तो आता तो निराकार को देखा नहीं, तो कैसे कहेंगे? उससे नहीं, दुनिया में भी कर्मों की गुई गति है। भीष्म पिता महाभारत में है। हाँ, उसको कहा भीष्म पितामह तुम्हारे बहुत जन्मों के कर्मों का फल है ये। तो और बताओ कुछ कभी सुना है? जी वाइब्रेशन अलग है, वहां तो मैंने आप कह रहे हो कि भाई जी ये ज्ञान सुनने के बाद संस्कारों के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है, वहां ज्ञान सुनने के बाद संस्कार के परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, पक्का? ऐसा ऐसा अगर आप पूछेंगे, कोई पूछेगा भाई जी आप कितना साल से ज्ञान चल रहे हो? 2 साल। तो ज्ञान क्या आपसे क्रोध चला गया? तो वो कहता मैं 5 साल से भक्ति करता हूं लेकिन मेरा तो नहीं गया। तो अगर आप 1 साल से भी इधर ज्ञान करते हो तो क्या आपका क्रोध चला गया? तो बताना पूछेंगे ना, ये प्योर दूध है तो इससे परिवर्तन क्या हुआ? दिखाना पड़ेगा ना ऐसा तो नहीं चलेगा कि मनुष्य आज हुशार हो गया है, साइंस ने इतना हुशार कर दिया है, तो ऐसे पटा नहीं सकते आप कुछ भी बोल के चले जाओ, तो कैसे कहेंगे? हाँ, तभी स्वस्थिति तब आया कि तीन चीजें है, कि तीन चीजें अगर आप कहीं भी मिलते हैं आपको वो सत्य ज्ञान है। कहीं भी कुरान में जाओ, बाइबल में जाओ, गीता में जाओ, कबीर में जाओ, कहीं भी आश्रम में जाओ, ये तीन चीजें अगर आपको मिलती है उसका नाम सत्संग। उससे सत गति अर्थात पाप मिटेगा, पुण्य आत्मा बनेंगे। वो तीन चीज क्या है? एक, कहीं भी आप जाते हो, कहीं भी आप आश्रम में कहीं भी जाओ किसी के ज्ञान, उधर अंदर जाते ही आपको कहते आत्मा समझ के बैठो। आत्मा सत्य है, शरीर आज है कल असत्य है, चला जाएगा। तो किधर भी जाओ अगर आपको कहते अंदर घुसते ही आत्मा समझ के बैठो, तब समझना ये सत्संग है। क्योंकि आत्मा का परिवर्तन करने जा रहे हैं, शरीर का तो काला शरीर को गोरा शरीर करने नहीं जा रहे हो। सत की सदगति किसकी? आत्मा की है। तो वहां अंदर घुसते ही पहले कहते हैं आत्मा। देखो यहां आते ही क्लास शुरू करने से पहले गीत बजा, एकदम शुरू करो गीत। क्यों? आपकी अवस्था आत्मिक स्वरूप में, पुराना सब भूल जाओ, अच्छा आत्मा का चिंतन करो। तो आत्मा समझ के बैठो अगर कहीं भी आश्रम में जाते ही कहते हैं तो उसका नाम सत्संग। कहीं है वो ढूंढ लो, कहां मिलता है, ठीक है। दूसरा, वहां जाने के बाद किसको ध्यान लगा रहे हो आप? तो वहां कहते एक निराकार सत्य, निरासत्यम शिवम सुनो, निराकार है, अभोक्ता है, अजलमा है, वो जनन मरण में नहीं आता है, भगवान सब लोग मानते हैं। तो वो भगवान निराकार को याद करो अगर कोई कहता है कहीं भी, तो कहना ये सत्संग से सदगति होने वाली है, ये प्योर सत्संग है। कहीं भी गुरु है और किसका फोटो होगा? निराकार को नहीं। इवन गुरु नानक के पास भी जाओ वहां भी गुरु नानक का चित्र रखा, निराकार को कहते हैं। कैसे याद करे? कहां है वो? तब कहा। तीसरा, कहीं भी जाते किसकी वाणी सुनते हो? फलाने महात्मा की, रामायण की, राम की, कृष्ण की नहीं, निराकार शुभ बाबा की वाणी है, ज्ञान उसका है। तो ये तीनों सत्य अगर आपको कहीं भी मिलता है ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमारी इसमें ही सही है, वो कहते आप अपना सही कहते हो, मैं अपना सही कहता हूं, तो युद्ध होगा। न्यूट्रल साइंस ने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, कहीं भी मिलाओ तो पानी बनेगा, दूध नहीं बनेगा। तब लोगों का साइंस पर विश्वास है। 2% हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो, कहीं भी ले जाओ, दुनिया के किधर भी जाओ तो पानी बनेगा। तो ये भी थर्मामीटर लेके जाओ, ये दुनिया के विदेश में जाओ, दुनिया के किसी कोने में जाओ, अगर ये तीन चीजें कहीं भी मिलते आपको, चर्च में जाओ, मस्जिद में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां ये तीन चीजें है, तो ये सत्संग है, ये सत गति करेगा, पाप मिटा, ये सुनने से, वहां बैठने से पाप मिटेगा। समझ में आया? दैट मीन्स किसी की दुविधा है तो बताओ, नहीं भाई जी ये नहीं है, सही नहीं है, ऐसा है, मान्य है कि ज्ञान तो बहुत है, मानना चाहिए ना। समझ में आए तो आप समझेंगे, फिर आप भी आचरण में जाएंगे और लोगों को भी समझा सकेंगे। हमने बहुत कुछ सुनाया, अंदर गया ही नहीं है तो व्यस्त हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मंजूर, ताकि आपके मन में दुविधा है तो पूछ लो, कि थोड़े से है, पूछ सकते हो, ठीक है। सत्य क्या है? तो कहीं सदा ही सत्य की स्मृति, तो स्व सत्य है, वो कभी अविनाशी है, मरता नहीं, मिटता नहीं है, शरीर खत्म हो जाता है। तो हमको सदा यह स्मृति चाहिए कि मैं आत्मा हूं। फिर उसके साथ किसकी मैं, किसका हूं मैं? सर्वशक्तिवान मेरा बाप कौन है? कोई पूछेगा आप किसके हो, तुरंत कहेंगे कहां से आए हो, इतने में आते ही पूछा कहां से आए हो, तो आप में से कोई एक हुशार निकलेगा, ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन ज्ञान सुना है, तो किसी ने के अंदर ज्ञान गया नहीं, तुरंत आपने कहा भाई जी हम तो परमधाम से आए थे, हाँ अभी शरीर का जन्म तो इधर से लिया है, तो ये जवाब देते हो तो आपके अंदर रूहानियत है, क्योंकि ये रूहानी संस्था है, आत्म अभिमानी है। तो मैं सोच रहा था कोई बताएगा भाई जी हम तो परमधाम से आए, हमारा घर परमधाम, हाँ शरीर यहां से आया, ये सेकेंड। तो ये स्मृति, ये स्मृति अगर है तो आत्मा की स्मृति, मैं आत्मा हूं। अगर आपको बताओ कहां से, तुरंत आप बताएंगे मैं जलगांव से आया हूं, आप जोधपुर से आए तुरंत बताएंगे ना, आपको अपना गांव याद है, शरीर का मतलब अभी भी हम शरीर के भान में, स्वस्थिति नहीं परिस्थिति, शरीर की स्मृति में है। तो शरीर माना 5 तत्व है, 5 तत्व माना 5 विकार है उसके, आपको इनको गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, संभव ही नहीं है, आएगा ही, इनको ठंडी लगनी नहीं चाहिए, संभव ही नहीं, लगेंगे ही, क्योंकि शरीर है, शरीर के अंदर अग्नि है, वो अग्नि काम करेगा ही। समझ में आया? तब बाबा ने कहा स्वस्थिति स्व आत्मा, तो आत्मा स्वयं शक्ति है, क्यों वो सर्वशक्तिवान का बच्चा है, हां कम होंगे अभी, यूज करते करते बैटरी डिस्चार्ज हो गई, लेकिन है वो सर्वशक्तिवान का बच्चा, किसी व्यक्ति का नहीं। अगर उसके साथ उसको ये स्मृत है मैं फलाने राजा का बेटा हूं, मेरा पिताजी मिनिस्टर है, तो वो नशा और रहता है। तो यहां मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, दुनिया में लोग कहते हैं मैं भगवान के बच्चे हम बोलने में बोलते हैं, तो क्या आपका पिताजी गुस्सा करता है, दुख देता है, भगवान दुख देता है, तो भगवान के नहीं हो, अभी हम नहीं कह सकते भगवान के बच्चे हैं। हम आप में से कोई कह सकते हो तो बताओ, आप जितने इधर बैठे आप अधिकार से कह सकते हो हम भगवान के शिव बाबा के बच्चे, कह सकते हो अभी भी नहीं? अगर कोई कहेगा, कोई कहेगा दूध प्योर है, देख लो तो मशीन डाल के देखेंगे तो दूध प्योर नहीं है, पानी है। अगर आपको हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान कौन, सत्य है, प्योर है वो, उसके अंदर क्रोध नहीं है। हाँ तो अगर आप में से कोई कहो भाई जी हमारे अंदर मिनिमम आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन में मैंने क्रोध नहीं किया, हाँ 1 महीने का बच्चा है भगवान का, 1 महीने का बच्चा मान सकते हैं, 1 दिन का है, तो जैसे बाप वैसे बच्चे, मतलब भगवान के बच्चे कहते हो, भगवान कौन, नहीं तो उसका निंदक हो गया, बाप इनका ऐसा और बच्चा कैसा है। तो स्वस्थिति और कुछ नहीं है, सिर्फ स्मृति, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सदा आपको याद रहे तो उसकी प्लानिंग करो, अपने आप नहीं होगा ये। तो जैसे आज अगर आपने मुरली सुने हो, बाबा ने मुरली में कहा आज, बच्चे ज्ञान का चिंतन करते रहो। ज्ञान का चिंतन होता नहीं है, क्यों करेंगे आप? तो उसकी विधि अगर आएगा तो ज्ञान सुनाते रहो। आज ये मिला भाई जी, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, आपके मन में भी आया, बुद्धि में भी आया, उसको भी अंदर डाल दिया आपने। ऐसे सवेरे से रात तक बार बार अगर कोई भी मिला, बार बार पूछते रहते हो, अपने आप को भी बताते रहते हो, आज देखो बाबा ने ये कहा, ये मुझे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो अपने को भी पढ़ाओ औरों को भी, तो अपने आप चिंतन नहीं चलता नहीं। तो दुनिया में हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे करना, बहुत कुछ भरा हुआ है, खाली नहीं कोई। तो आदत डालनी चाहिए कि हमको हमारी स्मृति सदा श्रेष्ठ रहे। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्मृति जैसी है वैसे वृत्ति का उसी प्रकार का विचार चलता अंदर, बुद्धि के अंदर वृत्ति से वातावरण बनता है। वैसी दृष्टि, किसी को देखते ही दृष्टि दिख, ब्रकुटी में आत्मा दिखाई देंगे, आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे, ये काला है, गोरा है, कौन है, क्या है, आत्मा ब्रकुटी में नजर जाएंगे। दृष्टि, वृत्ति, बोल, बोल भी देखो तुरंत, इनको आज बाबा के पॉइंट सुनाना चाहिए तो ज्ञान निकलेगा, और कोई दुनिया की इधर उधर की बातें नहीं आएंगी। तो शब्द निकलना नहीं चाहिए, निकलता है, कारण स्मृति नहीं, स्थिति नहीं है ना, एक के पीछे एक है। तो वो नहीं होते हुए आपको मेरे मुख से गलत शब्द नहीं निकलना चाहिए, संभव नहीं है ये। तब लोग दुनिया में कहते अग्नि गर्म होगा, पानी ठंडा होगा ही, तब कहा ये स्मृति अगर है तो स्थिति है। अगर वो स्थिति सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं, ये स्मृति है तो ये स्थिति में आती है, याद है, तो कोई परिस्थिति आई सहन कर सकते हो, तो सहन करने की शक्ति है उसके अंदर, समाने की शक्ति। हाँ पता है मुझे ये कौन, ये खराब बहुत है, तो बता होते भी देखा सुना तो भी वर्णन नहीं करेंगे, मुख से निकल ही जाएगा, अरे वो तो ऐसा है, उधर गए थे, वो ऐसे करते हैं, जानबूझ के नहीं, आदत बन गए, वो जो देखा वो वर्णन होगा ही। तब कहते उनके मुख पर कंट्रोल नहीं है, कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए पता नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, है ना। तो इसलिए कहा स्वस्थिति और कुछ नहीं करना, इतना सिंपल है। सिर्फ जैसे आपको नेचुरल याद है, किसी ने कभी भी पूछा तो आपको देखते ही पूछे कि भाई जी, कहेंगे नहीं आप देख पूछ, बोलेंगे नहीं, बहन जी कहेंगे तो हां मुझे ही बुलाया होगा कि मैं बहन जी हूं, ये याद है, मैं भाई हूं। अगर आपको देखते ही मैं कहता बहन जी, आपके कौन है, किसको बुलाया, मुझे तो नहीं कि कहां बहन जी है, पीछे भी बैठी होंगी, हाँ मैं तो भाई हूं, आप ये बात को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कहां से आए हो, तुरंत आप बताएंगे मैं इधर से आया हूं। जैसी शरीर की स्मृति है घर की, तो ऐसी स्मृति के लिए तो अपने आप स्थिति बने, लेकिन ये स्मृति कैसे बने तो उसका उपाय चाहिए। तो वो उपाय हमने अपने जीवन में देखा, सिंपल, रोज मुरली सुनो, एक महावाक्य, एक शब्द जो आपको अच्छा लगा सारी मुरलियों से, कोई भी एक शब्द ले लो, आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई, ये एक शब्द अगर याद नहीं था, थोड़ा दिन लिख करके अपने पास रखो, याद नहीं रहता है, एक पांच छह दिन क्या, तो बस बाद में नहीं, आदत बनेगी, शुरू में लिख करके जेब में रखना चाहिए। तो बार बार पढ़ो, अगर ये भाई आ रहा है उधर से, इसको पूछना है आज के मुझे याद नहीं, निकाल के पढ़ के पूछ लो, भाई जी आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताई, पढ़ के बताओ, एक दो चार पांच छह दिन आदत डालो, फिर किसी को देखते ही आपके मन में पहले विचार ये आएगा, इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। ये आदत डालनी है, अपने आप हमारी वृत्ति चेंज हो, आदत हो, ये बहुत जन्मों की आदत है। किसी को देखते बहन जी कहेंगे, भाई जी नहीं कहेंगे, आप हो ही नहीं सकता ये, तो आत्मा देखो ये संभव नहीं है। आत्मा दिखाई नहीं देती चमकता हुआ। तो इस आदत को डालना अगर चाहते हो, अपना मन शांत स्वच्छ, मन के अंदर शांति, कोई गलत विचार नहीं, मन स्वच्छ हो, क्योंकि जैसे मन स्वच्छ है बुद्धि संस्कार कर्म सब स्वच्छ होते जाएगा। तब कहा मन जीत जगत जीत, मन ही सारी बीमारी दुखों का सबका कारण है। तो मन को जीतना असंभव कहा, दुनिया ने कहा मन एक तूफान है, तूफान को तो रोक ही नहीं सकता है, मन एक घोड़ा है ये, लेकिन इस तूफान को इस घोड़े को रोकने वाला कौन? तो बाबा ने बुद्धि दिया है, बुद्धि का ज्ञान बच्चे तो आपके पास और एक शक्ति है, अब उस बुद्धि का यूज करो। कैसे यूज करेंगे बुद्धि को? जागृत करना है उसको, ठंडा हो गया है तो उसकी विधि मुरली जब सुनते हो, हाँ याद नहीं रहता थोड़ा दिन तक, नोट करो सारी मुरली नहीं एक शब्द, वो भी आपके इच्छा के अनुसार ले लो, जो अच्छा लगा जो करना चाहते हो, 5-6 दिन लिख कर जेब में रखना, बार बार अपने को पढ़ाते रहो सवेरे दिन में शाम को 2-3 दफा, कोई मिला उसको भी पढ़ के बताओ। 8-10 दिन आपने अभ्यास किया फिर लिखने की जरूरत नहीं, फिर अपने आप आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था, ये मुझे इनको सुनाना है, आज इनको सुनाना है, सुनते ही तैयार हो जाएगा आपकी बुद्धि, उस प्रकार के चीजें लेता है। जैसे आज के मोबाइल में कहा कि सेंसर लगा हुआ है, जानते हो आप, हमको भी पता नहीं पता चला, मोबाइल के अंदर सेंसर, सेंसर क्या काम करता है, सेंसर का अर्थ पता चला क्या चीज, कौन बताएगा, पीछे वाला बताओ, सेंसर का अर्थ क्या है? सेंसर माना अगर आपने मोबाइल में आज क्रिकेट देखना शुरू किया, रामायण देखना शुरू किया एक वीडियो निकालकर, तो उसके बाद आपको रामायण के ही वीडियो आएंगे, है ना। अगर आप एक बार कोई वीडियो देखना शुरू किया तो उसी प्रकार के वीडियो अपने आप डाउनलोड होंगे। हमने कहा ये कैसे है? कहते हैं उसके अंदर सेंसर, इसकी इंटरेस्ट क्रिकेट देखने का है तो क्रिकेट के सारे वीडियोस आपके अंदर डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये कैसे पता चला उनको? तो उसको मोबाइल को सेंसर लगा हुआ है, तो आप क्या देखते हो वही, यहां भी आप क्या सोचते हो यहां भी लगा हुआ है, जैसे सोचते हो वैसी प्रकार के लोग आपके संबंध संपर्क में आएंगे, आपको ऐसे दोस्त ऐसे लोग ऐसे संगठन ऐसे परिवार ऐसे लोग ही आपके नजदीक आएंगे जैसे आपकी सोच है। तो हमारे हमारे मोबाइल में भी आत्मा में भी एक सेंसर लगा हुआ है ना, उसी प्रकार के लोग आपके आकर्षित करेंगे, सही, मोबाइल में सेंसर डाला पता चला ये सुना था, हाँ उसी प्रकार के वीडियो जो आप एक बार देख लो कोई भी वीडियो निकालो तो उसी लेवल के आते रहेंगे, अच्छे तो अच्छे, रामायण देखते रामायण के आएंगे ज्यादा, तो उसके अंदर सेंसर। यहां भी ये मन जैसे सोचता है तो उसी प्रकार के विचार आएंगे, उसी प्रकार के लोग संबंध संपर्क में आएंगे। तो आज हमारे जीवन में परिस्थिति आने का कारण, समस्या आने के कारण हमारा मन उसी प्रकार का चिंतन करता है, औरों की समस्या के लिए प्रतिचिंतन करता है, ऐसे गलत विचार करता है, तो उसके कारण गलत चीज ही होती है। अगर ऐसा हो तो गाड़ी में बैठते ही विचार आएगा, एक्सीडेंट होगा तो जरूर आपने विचार किया, तो जैसे सोचेंगे वैसी परिस्थिति आएंगी। तो अगर विचार आया ही नहीं है तो परिस्थिति आते हुए भी आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसा विचार नहीं है। तब का थॉट इज रूट कॉज, विचार ही सभी बीमारी दुख अशांति का कारण है, तो विचार को चेंज करो। तो कैसे करो? पूछेंगे भाई जी विचार शुद्ध होना चाहिए, मन शांत हो, मन में अच्छे विचार हो सदाई, तो जब तक ज्ञान सरोवर में हो तब तक हो सकता है, बाहर जाने के बाद होगा तो वहां भी हो तो उसकी विधि बताइए, वहां भी हो सकता है। उसकी विधि ये है, क्या विधि? एक मुरली के पॉइंट 8-10 दिन करो, मुरली के पॉइंट एक जो अच्छा लगा लिख करके रख, नहीं मेरे मोबाइल में है वो नहीं काम करेगा, हाँ मोबाइल में है वो, आप लिख करके अपने पास रखो, इनको देखते ही याद नहीं आ रहा है, किसी ने फोन किया बात करो जरूर, बिजनेस की किसी की भी करो, तो उसको भी एक शुभ विचार देना है, याद नहीं आ रहा है तो वो जेब से निकाल के पढ़ के बताओ। तो मेरे मुख से जितने भी संबंध सवेरे से शाम तक आते हैं, पहले अज्ञानी है तो अज्ञानी को बाबा नहीं बोलो, मुरली नहीं बोलो। आज मैंने किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताऊं, ऐसे करके भी दे दो। ज्ञानी है तो वो बाबा का बच्चा, बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा था, आज मुरली में ये कहा था। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को शुभ समाचार देना है, तब जाके ये मन स्वच्छ होता जाएगा। तो मन स्वच्छ है तो आपकी स्थिति भी अच्छी होती, बोल कर्म सब अच्छे होते जाएंगे, आपको अपने आप अच्छे जीवन में सुख शांति हो, विघ्न न हो, बीमारी न हो, संभव नहीं है जो हम चाहते हैं बिना, क्योंकि सृष्टि में एक नियम है, बिना कुछ बोए हुए कुछ उगेगा नहीं। लेकिन एक बीज बोलो 50-100 दाना देता है धरती आज भी, लेकिन एक बीज डालना पड़ता है। आपको बिना बोए हुए अच्छा मिल जाए, ये मनुष्य की वृत्ति आज ऐसी है कलयुग में, बिना कुछ किए हुए चाहते हैं। आप दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, आप मेरे लिए दुआ करो, आप मेरे लिए योग लगाओ, हाँ मैं योग लगाऊ, मैं खाना खाओ आपका पेट भरेगा, हाँ ऐसे ही है ना, आप मेरे लिए योग लगाओ, आप मुझे सकाश दे दो, ये किताब आप दुआएं दे दो। ये मांगने की आदत एक कलयुगी दुनिया की नेचर है, नहीं आपके पेट भरना है तो मैं खाऊ आपको मिल जाएगा, मिलेगा हाँ, आप नहीं खाओ आज मैं आपके लिए ले खाता हूं चलेगा, मैं आपके लिए दवाई लेता तो आपकी बीमारी जाएंगी, हाँ जा सकती है। जब ये सोचो हमको सकाश दे दो, हमारे लिए योग करो, बोलते कि नहीं, हमारे लिए दुआएं करो, तो ये अर्थ यही हो गया। जिसको बीमारी है चाहे शरीर की हो चाहे आत्मा की हो, है ना, उसको दवाई लेना चाहिए ना, कि दूसरा लेगा तो चले जाएगा होगा, हाँ। जिसके अंदर पाप है, अपनी बीमारी अपनी समस्या को मिटाना चाहते हो, आपको योग करना है, आपका पाप है, किसी ने देने से नहीं होगा। कितना आज बाबा ने कहा, गरीब कौन श्रीमंत कौन, क्या गरीब को कपड़ा देंगे वो श्रीमंत हो जाएगा, उसको और गरीब कर दिया आपने, कल भी मांगेगा, हाँ ठंडी होते अरे इनके साथ मांगना चाहिए, तो ये गरीब कौन किसको कहा। बाबा ने कहा भगवान गरीब निवास कहते, किसमें गरीब निवास, इसमें नहीं, भौतिक भाषा नहीं, आत्मा की। अपवित्र आत्मा है तो वो गरीब, पवित्र है सौकार है। तो हम हर चीज आध्यात्मिक ज्ञान को भौतिक में लगाते हैं। तो आज बाबा ने मुरली में कहा गरीब कौन श्रीमंत कौन, तो बाबा को गरीब निवास कहते हैं। सब लोग कहेंगे गरीबों का है सौकारों का नहीं भगवान, प्रश्न आएगा ना। तो बाबा ने कहा मैं गरीब निवास, गरीब का अर्थ क्या है, हाँ तब कहा, तब फिर आगे बता, अनाथ है जिसका मालिक नहीं कोई भी, धनी दोरी नहीं है, तो गरीब निधन के है, तो अनाथ आश्रम है, गरीब है वो, कोई है ही नहीं उनका, हमारा तो है। अभी ज्ञान मिल गया, समझ में मिला हम भगवान के बच्चे, तब आपको पूछा, आप सदा अपने आप से एक प्रश्न पूछो, अगर अपनी अवस्था अपने को ठीक अच्छा बनाना चाहते हो, एक ही बस, योग करो ज्ञान सुनो क्रोध छोड़ो, नहीं कुछ नहीं करना है, एक बीज बोलो 50-100 दाना धरती देंगी अपने आप, एक ही काम करो सवेरे उठते ही सदा पूछ लो, क्या मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, कोई मुझे कहे देखते कहेंगे भगवान का बच्चा कहेंगे मुझको, अपने आप से पूछो हमारा पिताजी क्या करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अभी बाबा ने काम दिया एक महीने का, क्या काम दिया, हाँ तो कैसे बाप से, ब्रह्मा बाप समान बनना, नंबर वन पवित्रता है, ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। तो एक महीना थी, ब्रह्मा बाबा क्या करता, गुस्सा करता था कभी, करता होगा ना, सुना कभी कहानी में बचपन से लौकिक में कभी सुना तो कहानी है, तो बाबा हीरे एक कर रहा था, हीरे का बिजनेस था, पूरी कागज में होती है। तो छोटी बच्ची निर्मल शांता दादी आई, इधर बैठी और बाबा के हाथ से ऐसे कर दिया और सारे हीरे फैल गए। तो बाबा ने क्या, गुस्सा क्या होगा ना, हाँ आप होगा तो क्या करेगा पूछ लो। तो बाबा ने उसको क्या कहा, बच्ची जाओ मम्मी बुला रहे, जाओ जाओ जल्दी मम्मी बुला रही, भेजा। और बाबा ने सबने मिलकर झाड़ू लगा के इकट्ठा किया। महाराज ने गुस्सा नहीं किया, ये पहले अज्ञान कान की बात कर रहा हूं, तो हिस्ट्री में भी देख लो। और हम क्या कर रहे, कोई पूछेंगे इनको बाबा ब्रह्मा बाबा को दादा लेखराज को भगवान ने क्यों सिलेक्ट किया, उनके तन में क्यों, कोई पूछते हैं ना। तो ये सब बाबा ने बताया क्या करता था। आप करेंगे तो एक एक बाबा ने कहा, कभी क्रोध नहीं, बिजनेस में कभी किसी को लूटा नहीं। तभी सारे राजस्थान के सारे राजाएं भी बुलाते थे, बाबूजी आप आओ, आप बताओ, आप जो कहेंगे वो ठीक। तो क्यों पत विश्वास, बिजनेस में भी ठगी नहीं। तो हम भी बिजनेस करते हैं, आप देख लो हमारे बिजनेस में हम कैसे कर रहे हैं, हमारे बोल कैसे है, मुख से कैसे बोल निकल रहे हैं। क्या भगवान हमको पसंद करेगा, हम बाबा शिव बाबा के बच्चे कहने लायक है वर्षा बाद में, कम से कम हम माने, दूसरे माने ना माने, क्या मैं मानता हूं, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी का, पहले आपका दिल पसंद, पहले स्वयं पसंद हो, फिर लोग पसंद, फिर प्रभु पसंद। तो क्या आप अपने आप को पसंद करते हो, क्या मैं अपने आप को, मैं भगवान का बच्चा हो स्वीकार करते हो, फिर कंपेयर करेंगे। शिव बाबा अगर मैं भगवान का बच्चा हूं, हमारा पिताजी क्या करता और मैं क्या करता हूं, तो हर कर्मों में याद रहेगा नहीं हमारा बाबा ऐसा नहीं करता है, हमारा पिताजी ऐसा नहीं करता है, हमारा पिताजी शराब नहीं पीता है, हमारा पिताजी गुस्सा नहीं करता है, हमें नहीं करना है। तो ये चेकिंग, अगर ये स्मृति है तो आपकी अवस्था है। अगर अवस्था है तो ये जो जीवन में दुख समस्या सब कुछ आ रहा आएगा, वो आपको कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपकी स्थिति है। जहां अवस्था है वहां अपने आप व्यवस्था हो जाती है, अवस्था नहीं तो व्यवस्था नहीं होती है। जो हम कहते हैं हमारे लिए सब व्यवस्था हो, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। अगर हमें कोई सलूशन सहयोग नहीं मिल रहा है, कारण हमारी अवस्था नहीं है, हमें कोई सहयोग नहीं दे रहा है, हमारा कोई कर्म सफल नहीं हो रहा है, कहीं भी बिजनेस करो कुछ भी करो सफल नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। फिर हम कहते इसके कारण, इसके ये विघ्न करता है, ये विघ्न डालता है, ये समस्या करता है, इसलिए हो रहा है, वो नाम डाल देते हैं, क्यों हो रहा है, तो मेरी अवस्था नहीं है, तो व्यवस्था नहीं होती संसार में, ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, ऐसा सबका सहयोग नहीं मिलता है। तो सहयोग नहीं है तो वहां क्या होता है, दुख ही दुख है, समस्या ही समस्या है, क्या करो क्या करो। तो समस्या है तो खुशी नहीं है, तो मेन चीज आई अवस्था। तो परिस्थिति समस्याएं बहुत कुछ है, उन सब समस्या पर अगर जीत पाना चाहते हो, पहले बीज पहले ठीक करो। एक स्मृति पहले, मैं कौन, सवेरे उठते ही अपने आप को याद करो, मैं आत्मा हूं और परमधाम से आया, हमारा घर परमधाम है और शिव बाबा का मैं बच्चा हूं बस। उसके बाद अपने आप बाबा ने क्या कहा, बाबा कौन कहां है, मेरा कौन है, मैं कोई धनी का हूं निधन का नहीं, ये सब अपने आप आएगा। स्मृति से वृत्ति दृष्टि कृति सब चेंज हो जाएगा, पहले स्मृति चाहिए। और स्मृति को एक्टिव रखने के लिए, जागृत रखने के लिए क्या करो, क्या करो, हां ज्ञान के बिगर सत्संग के बिगर सतगति हो नहीं सकती है। हां ज्ञान सुनने से भी नहीं होगा, सुना याद ही नहीं है, आपने बहुत कुछ सुना तो याद ही नहीं रहता कितनी बुद्धि हमारे सतो प्रधान नहीं है। तो उपाय है उसका, एक ही शब्द पूरा लिख नहीं सकते हो, एक शब्द लिख के रखो। बाबा कहते हैं माताओं को, कहता है गांठ बांध के रखो। ये गांठ क्यों मारी? तो याद है, हाँ ये मुरली के पॉइंट याद रखना चाहिए। भाई लिख सकते हैं तो एक कागज पर लिख करके जेब में रखो, और वो भी सदा नहीं, थोड़े दिन आदत डालो। कर सकते हैं कि कठिन है? कठिन है तो और सहज है, और भी सहज बताता हूं। एक कठिन है तो बताओ, हाँ कोई कठिन है? हो सकता है माता जी, हो सकता है। एक रोज एक पॉइंट याद रहेगा, एक पॉइंट किसी को सुनाना ही है, हो सकता है। बिना एक दिन मधुबन में जब साकार में ब्रह्मा बाबा था, जानकी दादी नाश्ता करने बैठी थी, बाबा चक्कर लगाते थे, तो बाबा ने देखा बच्ची नाश्ता कर रही, बाबा आया नजदीक, बच्ची क्या कर रहे हो? बाबा नाश्ता कर रहे हो। नाश्ता कर रहे हो? ज्ञान सुनाया किसको? किसी को नाश्ता कराया, ज्ञान सुनाया? नहीं बाबा, मुरली अब भी नाश्ता करो, पहले ज्ञान सुनाओ, पहले औरों को खाना खिलाओ, फिर आप खाओ, पहले खिलाओ फिर आप खाओ। तो पहले ज्ञान सुनाओ। तो रोज एक आदत डालो तो अगर जीवन अपने आप ठीक नहीं बनता है। आदत दो, बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प, ये दृढ़ करो, मुझे रोज एक मुरली के पॉइंट और एक दूसरों को सुनाना ही है। तब तक नाश्ता नहीं करना है, सुनना भी है सुनाना भी है। कैसे सुना भाई जी, आज कोई मिला ही नहीं है। हां जानबूझ के फोन करो इनको, वो फोन करने में एक महीने में आपको 100 रुपया खर्चा होगा, फ्री फोन लगता नहीं, लेकिन 100 जन्म धनवान बनेंगे, क्योंकि ये ज्ञान धन दे रहे हो इनको आप। ये धन अविनाशी है, इसका 100 जन्मों तक मिलेगा। तब का ज्ञान धन का दान करो, ये दान खत्म होने वाला, खराब होने वाला नहीं है, अविनाशी है, इसका फल 21 जन्मों तक मिलेगा का। तो ज्ञान दान करना सीख लो। ऐसे गरीब क्यों दान ही नहीं किया? सुन करके लिख करके रख दिया, सुना हमने, दान नहीं किया। दान करना सीखो। संभव है कि कठिन है? महाराष्ट्र में पॉसिबल है, जोधपुर में होगा तो जोधपुर तो फिर हरा भरा होगा। हाँ जोधपुर में तो हरा भरा करना है। कितने लोग हैं जोधपुर में? तो कोई आप ऐसे दान करने लगेंगे तो कितनी भीड़ होंगी। हाँ इनके घर में तो सब इसके मिलो तो ये बहुत दान करता है, ज्ञान दान करता है। अगर कोई नहीं मिलता है, कुछ प्लान करो, कुछ तो खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर कोई कहेंगे भाई जी हम अकेले हैं, कोई मिलते नहीं हमको सारा दिन में, तो उसका भी निवारण जानबूझ के आप किसी को फोन करो जिसको जानते हो। आप पूछना भाई जी कैसे हो, आज देखो सेंटर में गए थे, बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाया, वो भी खुश हो जाएगा। आपको भी लगा मैंने किसी को मैंने सेवा किया, खुश रहने की। एक गुलजार दादी कहती थी खुश रहो खुशी बांटो। जब मैं सुनता था शुरू में, हमने कहा खुश कैसे रहो कैसे बांटो, कहां मिलती खुशी, मैं मार्केट से लेके आके बांट लो। तो हम सोच रहे था उस समय कि दादी तो जब भी कहती है कि खुशी बांटो। हमने कहा दादी को पूछना, दादी खुशी कौन से मार्केट में मिलती है? वो हाँ जोधपुर में मिलता है कि जलगांव में मिलता है? हाँ पूछना पड़ेगा ना कहां मिलता है। तब पता चला कि खुशी और किधर मिलती नहीं, जो मुरली सवेरे सुनते हो। हाँ तो वो मुरली के पॉइंट एक किसी को सुनाओ और उसका चेहरा देखना खुश, और आप भी देखो अपने को, हाँ मैंने कुछ सेवा किया आज, तो ये खुशी करके देखना। ठीक है, तो खुशी कैसे बांटना है, खुशी कैसे आएंगी जीवन में? सदा कहते खुशहाल रहो, कैसे रहेंगे बिना दवाई लेवे बीमारी ठीक हो? ऐसे संभव नहीं है, तो कुछ करना पड़ता है। खुश रहने का तरीका, मन को शांत स्वच्छ रखने का तरीका, मन के अंदर अपनी अवस्था ऐसे स्मृति अच्छी रहे, वो अपने आप नहीं होगा। तो मुरली जो रोज सुनना है, हाँ किसी कारण नहीं सुनी उसका भी निवारण, भाई जा नहीं सकता सपेरे उसका भी निवारण है। अगर आप किसी कारण नहीं गए, मोबाइल में पड़े इधर पड़े नहीं, सेंटर में सवेरे दिन में शाम को फोन करके वहां से ले लो, इधर उधर से नहीं लेना। जो प्रॉपर चीज है कहां से मिलती है, ज्ञान का स्टेशन है, करंट जहां से मिलता है वहां से ले लो, पावर उससे ले लो, फुल पावर मिले, इधर उधर लेंगे फुल करंट नहीं है। तो जहां से सेंटर को फोन करके तो आपका अटेंडेंस हुआ, वहां से बहन जी आज सेंटर में नहीं आए, आ नहीं सके, कुछ भी कारण हो, आज का एक मुरली के पॉइंट सुना है, तो बाबा ने निमित्त बनाया, स्थान बनाया, वहां से ले लो। तब कहते पानी रस्ते पर सब जगह मिलता, कहीं भी टैप में पियो नहीं, वो साफ नहीं, टाके साफ नहीं करते है, है ना, पानी मिल रहा है लेकिन वो पानी ठीक नहीं है। पानी वहां से ले लो जहां टाके अच्छा है, साफ स्वच्छ है, कहीं किधर से भी ले लो नहीं, ऐसा हो सकता है कि कहीं से भी ले लो, किसी से भी पूछ लो। पहला प्रबंध सेंटर नहीं है, कुछ साधन नहीं हो सकता है। सेकंड, फिर आजकल तो सर के मोबाइल में है, तो भी मोबाइल में होते हुए भी तो वहां से ही लेना है। रास्ते पर बहुत जगह खाना मिलता नहीं है, अपने घर का ही खाना खाना है, घर में सफाई है, घर इधर बाहर मिलता है तो भी नहीं लेना है, कि स्वच्छ अन्न से स्वच्छ तन बनेगा। तो ज्ञान सेंटर में पूछा आपने, हाँ हमारे सेंटर आपकी अटेंडेंस भी हुई उधर, तो याद भी आएगा बाबा के मुरली, बाबा का सेंटर है, स्थान बनाया, उस स्थान से लेना है, कहीं से कुछ भी ले लो नहीं। हो सकता है कि कठिन है, जोधपुर में सरदारपुरा में जाते हो शील बहन के पास कि फुल बहन के पास, शील बहन के पास हाउसिंग बोर्ड में जाते हो, और जलगांव मालेगांव, मालेगांव में आपका भाई था कौन बताओ, गंगाराम भाई, पार्वती माता और गंगाराम भाई दो मुख्य, गंगाराम भाई लास्ट तक, अभी थोड़े साल पहले ही शरीर छोड़ा है, गंगाराम भाई टोपी धोती जैसे ब्रह्मा बाबा है वैसे ही, नाम जलगांव माना, मालेगांव माना गंगाराम भाई, जलगांव मालेगांव सब था उसके पास, मैंने बहुत लोग सेवा करके गए। तो ऐसी इतने सेंटर्स खोले तो आपको भी क्या करना है, ऐसे कुछ सेवा का, सेवा कौन करेगा जिसकी अवस्था है, अगर अवस्था नहीं तो आप ऐसी औरों को व्यवस्था बना के नहीं दे सकते हो। आपको लगता है मुझे रोज ज्ञान सुनना है तो इनको ज्ञान कैसे मिलेगा इस गांव में, तो वहां सेंटर खोल गए, ऐसी व्यवस्था बना के देना है, सेंटर खोलने का विचार भी उनको ही आएगा, तो उनको देखा हमारे गांव में नहीं था, मैं दूसरी जगह जाके सुनता था, कितनी मेहनत होती थी, तो हमको अभी आपकी ताकत है तो हमारे गांव में इधर सेंटर खोल के देना है, इधर जो लोग रहते हैं उनको ये ज्ञान मिलना है कि आपकी अवस्था से आप व्यवस्था करते हो, अनुभव से व्यवस्था करते हो। हमको इतनी तकलीफ होती थी, इतनी दूर जाके सुनते थे, मिला नहीं ज्ञान, तो हमारे गांव वालों को कैसे मिलेगा, तो ये व्यवस्था भी कौन करेगा जिसकी ऐसी अवस्था हो, जो रोज देखता हमने रोज ज्ञान सुन करके हम क्या से क्या बने, तो हमारे गांव में भी ऐसे होना चाहिए। तो सोचता है तो वहां सेंटर कैसे बनाऊं, कैसे खोलो, क्या करो, अगर आपकी ताकत है तो आप कहेंगे नहीं बाबा का सेंटर खोलना चाहिए, तो ये बहुत बड़ा दान है, क्योंकि कितने लोगों की अवस्था बनेंगी उससे, कहां से कहां जाएंगे ना, तो इसके लिए लक्ष्य रखना, सिर्फ अपने तक नहीं, हमने सुना नहीं। तब बाबा ने कहा कि अगर पर समस्या नहीं है आपके जीवन में भी औरों के भी, स्वयं भी विघ्न मुक्त रहो समस्या मुक्त, औरों को भी समस्या मुक्त विघ्न मुक्त बना, तो ऐसी अवस्था, तो वैसे आप भी व्यवस्था करेंगे। जोधपुर में बहुत गांव गांव खाली है, हाँ बहुत जगह सेवा करने चाहिए, दो ही सेंटर मेन है ना, हाँ हाँ एक है वो महा मंदिर, हाँ वहां भी है, हाँ फलोदी में, फलोदी के नजदीक कोई है, हाँ फलोदी में है, उधर बहन जी है बनाने चाहती है, जमीन ढूंढ रही है, लिया भी होगा लिया, हाँ तो आप लोग कभी जा करके उनको मदद करो, हाँ जमीन लिया, हाँ ले रहे कहा, हाँ हाँ शुरू करना है, हाँ एक कुमार भाई जाएंगे अभी, देख जब बाबा ने इधर भेजा है मजबूत होके जाओ, हाँ कोने कोने में सेंटर खोलना चाहिए, राजस्थान बहुत खाली है, तो फलोदी में कभी जाओ, अकेली बहन है उधर, हाँ मनीषा बहन अकेले उधर जाकर के सिर्फ मदद करना, कभी कोई पहचान होती है किसी से, सबके सहयोग से है ना। हाँ अच्छा, मना ये कहता हम राजस्थान के हम ही राजा बनेंगे ये अच्छी राजा है, हाँ राजस्थान के हम ही राजा बनेंगे, ऐसा आवाज निकलेगा तो राजा तो आवाज करेगा ना, तभी तो मैंने कहा राजा इधर बैठे हैं, अभी फलोदी में राजा अपना स्थान बना के दिखाओ, किला बना के दिखाओ, हाँ कुछ सेवा करके दिखाना चाहिए ना। अगर आपकी अवस्था है तो व्यवस्था अपने आप लक्ष्य होगा, मुझे व्यवस्था करनी है, अपना किला बनाना है, राजा होगा तो अपना किला बनाएगा ना, इतने बड़े बड़े राजस्थान में किले कैसे बने, उनकी ऐसी अवस्था थी, ऐसे धनवान थे तभी इतने बड़े बड़े, अपने उसके लिए खर्चा बहुत है, सबको सहयोग चाहिए, तो अवस्था सुव्यवस्था। तो अगर आप चाहते हो मैं राजस्थान का राजा बनूंगा तो ऐसी व्यवस्था भी, अवस्था पहले चाहिए, तो राजा ही अवस्था बनाओ, सब ज्ञान धन से भरपूर, सदा ज्ञान से भरपूर। तो कैसे होगा ये, तो रोज ज्ञान धारण भी करो और दान भी करने लग जाओ, तो जितने लोगों को दान करते हो तो अपने आप आपकी अवस्था सदा स्वच्छ, कोई इधर उधर की बात ही नहीं है, तो स्वच्छ अवस्था है तो व्यवस्था भी वो स्वच्छ बनाता है ना। जैसे अवस्था तैसी व्यवस्था, देख लो किसी को देखना चाहते हैं, अगर आप देखना तो ये बहन जी का घर कैसे हो गए, बहन जी कैसी है ना, जैसे उसको कहते हैं कलर थेरेपी। अगर किसी भाई को कपड़े का दुकान में ले जाओ और उसको तुम कपड़ा जिसको जो चाहे ले लो, तो वो कपड़ा जब सिलेक्ट करता है उससे कहेंगे ये व्यक्ति कौन है, अगर इसने लाल कपड़ा सिलेक्ट किया तो कहेंगे बहुत कठोर व्यक्ति है, क्रोधित है, कठोर व्यक्ति है। अगर वो ब्लू कलर का व्हाइट कलर से कलर कपड़ा सिलेक्ट करता है, ये सात्विक व्यक्ति है, एक कलर थेरेपी से। अगर किसी के घर में जाओ, बाहर तुलसी का झाड़ है, पौधे है, पत्ता सूखा हुआ है, झाड़ को पानी नहीं डाला है ना, पत्ते सूखे फूल ही नहीं है, तो देखेंगे अंदर रहने वाले भी कौन होंगे, तब भारत के अंदर घर के सामने तुलसी का झाड़ लगाते हैं और वो हरा भरा होना चाहिए, साफ स्वच्छ। अगर वो सूखा हुआ है तो अंदर वाले कैसे होंगे, तो अवस्था व्यवस्था से बता देती है। अगर आपके घर के सामने एक भी झाड़ को पत्ता सूखा नहीं, अगर अमेरिका जाओ आप तो अमेरिका में ऐसे है, हर एक के घर के सामने गार्डन है, अगर आप व्यक्ति ने गार्डन के अंदर एक भी पत्ता सूखा नहीं होना चाहिए, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर देखता रहता है, चक्कर लगाते रहता है, तो बोर्ड लगा के जाते हैं आप अपने गार्डन को एक घास काटा नहीं, ठीक नहीं किया, मेंटेन नहीं किया तो करो जल्दी, अगर नहीं किया तो म्युनिसिपैलिटी वो लोग आके स्वयं करेंगे और आपको इतना बिल देंगे, इतना खर्चा। अगर आप गांव में कहीं मकान छोड़ के कहीं गया किस कारण से, तो आपने व्यवस्था, आपको इतना टैक्स लगेगा, कौन करेगा आपका गार्डन, ये आप नहीं है, ये देश की संपत्ति है, तो देश के अंदर नीट क्लीन, मेरा गार्डन सूखा रहेगा खराब आपको क्या, नहीं आप अपना नहीं देश है ये, गार्डन एकदम नीट क्लीन, एक भी पत्ता सूखा नहीं होना चाहिए, कैसे भी घास बड़ा हो गया काटना है, नहीं तो आपको फाइन लगेगा, वो नोटिस लगाएगा, उधर आपको बताएगा नहीं, वहां एक नोटिस लगा के जाएगा। एक दिन देखा मैंने अमेरिका में एक भाई, प्रोग्राम था, हमने कहा भाई जी चलो, नहीं मुझे आज पहले ये काम करना, मशीन ला करके पहले घास करना, नहीं तो कल नोटिस लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। हमने कहा बाद में करो ना प्रोग्राम के बाद, नहीं नहीं पहले करना है, पहले मशीन लेके सवेरे सवेरे घास काटने लग गया, तब पता चला, तब देखा है सब जगह पर नोटिस लगता है, घास एक पत्ता भी पका हुआ नहीं चाहिए, साफ स्वच्छ, क्योंकि देश की संपत्ति है ये, है ना। तो आप अपना जैसे चाहे करो, ऐसे नहीं, तो राजा अगर हो तो राजा का तो कैसे होगा, हाँ जैसी आपकी अवस्था, तब आज दुनिया में आज तक भी अमेरिका माना नंबर वन, धन से भी, डॉलर के धन भी उनका नंबर वन, अवस्था भी, वेल एजुकेटेड लोग, समझदार, वो समझते हम नंबर वन हर प्रकार से ए, तो वो अवस्था मेंटेन करता है, तो ऐसी व्यवस्था भी। तब कहते हैं अगर आपकी अवस्था मन आपका स्वच्छ है, घर में जाओ एकदम स्वच्छ। अगर मन ठीक नहीं, उसके घर में जाओ कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, कई जूता ऐसे पड़ा हुआ है, खाना खा के थाली ऐसी रखी हुई है, धोया ही नहीं कल रात का, सब्जी देख लो सब्जी ऐसी सड़ी हुई ऐसे पड़ा हुआ है। अवस्था से व्यवस्था। तब बाबा सत्युग कैसे आ रहा है, ये चमत्कार ऊपर से नहीं आ रहा है, आपका मन यहां पहले स्वच्छ कर रहा है, आपकी अवस्था बनाता है। ऐसी अवस्था वाले आत्मा को तो बाबा सत्युग में ले जाएगा, तो वहां भी आप ऐसी अवस्था व्यवस्था बनाएंगे, नहीं तो दो दिन के बाद वहां भी गंदगी हो जाएंगी। यानी क्या असंस्कार है यहां, तो कैसी व्यवस्था। देखो और एक देखा मैंने, बहुत बड़ा गार्डन था, ग्राउंड था, तो सेंटर के थोड़े से लोग थे, पिकनिक कर रहे थे, तो एक कोने में एक युगल छोटी सी बच्ची को लेके बैठे थे और उन्होंने उस बच्ची को कागज दिया डस्टबिन में डालो, तो उन्होंने कुछ खाया, तो उस ग्राउंड में इस कोने में उधर बैठे हो, इस कोने में डस्टबिन है, वो लड़की देखो दौड़ते दौड़ते, हमने कहा लड़की कहां जा रही, डस्टबिन उससे भी बड़ा है, जो लड़की जितनी है उससे भी बड़ा डस्टबिन है, तो वो कागज ऐसे फेंक के जाना चाहिए, जब तक वो कागज उस डस्टबिन में नहीं गया तब तक वो लड़की वापस नहीं, तीन चार दफा ऐसे फेंका नीचे गिरा, फिर उठाया, फिर गया, फिर गिरा, जब तक वो कागज डस्टबिन में नहीं गया तब तक वो लड़की वापस नहीं आई। अवस्था मां बाप ने कैसे सिखाया। अगर आपको और मैं हमको कहीं कहो एक फेंक के आओ, कहां फेंकेंगे। अवस्था। तब कहा अमेरिका नंबर वन क्यों, ऐसे अपने अपने हर बात में अंदर, तो अवस्था एजुकेशन है, डिसिप्लिन है ना। तो यहां भी बाबा वो चाहता है बच्चे नंबर वन अवस्था हो तो नंबर वन युग में आएंगे, वो सत्युग है, नहीं थोड़ा कुछ कमी रहेगा त्रेता में आना पड़ेगा, और कुछ कम हो गया तो आपके हाथ में आपका भाग्य है। क्या चाहते हो, नंबर वन चाहते हो, नहीं नंबर थ्री ठीक है, कौन जाने नंबर थ्री में रहो, तो आपकी इच्छा। ऐसे नहीं कहो ये गरीब क्यों, ये ऐसा क्यों, जैसा कर्म वैसी आपकी अवस्था। तब का अवस्था से व्यवस्था बनेंगी। अवस्था कैसे बनेंगी, तो अवस्था की विधि बताया। अगर अच्छे फल मिलना चाहिए तो अच्छा बीज बोना पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं लगेगा ना, नहीं उनका देखकर उन्होंने लगाया तो चोरी करना पड़ेगा, फिर मांगना पड़ेगा। ये अवस्था क्यों आई, अपने पास नहीं तब मांगने का आया, ये चोरी क्यों आया, आप मेहनत कराना चाहता है, दूसरों से लेना चाहता है, तब यह आदत आई। तब बाबा के दिन सब आदतों से मिटाना चाहते हो, आप अपने को भरपूर करो, अपनी अवस्था बनाओ। इसमें कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ है तो बताओ, कर सकते हो कि सुनने तक ठीक है, जलगांव तक ये पानी जाएगा। हाँ हाँ, जलगांव तो नाम का, जलगांव को अभी तो क्या करना पड़े, जल जल नहीं, मालेगांव, मालामाल, हाँ मालामाल होना चाहिए ना, जलगांव के बाजू में मालेगांव। हाँ कॉटन, सारे कॉटन के मिल है, कपड़ा सूती का है ना, मैं बहुत दफा आ गया, जब भाई थे तभी भी गया बहुत दफा, गंगाराम भाई थे, पार्वती माता थी उस समय, तो वहां सारे कॉटन टेक्सटाइल तो होगा। कोई तकलीफ है तो बताओ, कोई तकलीफ है, ठीक है, फिर भी आपके मन में अभी दो चार दिन रहे, अभी जाने वाले हो, तो आपने इधर रहने के बाद सुनने के बाद कि आपके मन में कोई प्रश्न होगा ना, भाई जी अभी तक भरपूर होके नहीं जा रहा है, एक कमी रह गई, एक प्रश्न रहेगा, ऐसा कुछ प्रश्न है तो बताओ, क्योंकि अंतिम स्वाहा करके जाना है ना, क्योंकि नाम है ज्ञान सरोवर में जो स्नान करके जाते हैं उनका नाम परी, फरिश्ता है वो, तो ज्ञान सरोवर से आप स्नान करके जा रहे हो तीन चार दिन से, तो आप जाते समय फरिश्ता बन के जाना पड़ेगा ना, कोई देखेंगे अरे ये ज्ञान सरोवर से फरिश्ता बन के आया नहीं आई, ऐसे कुछ रह गया हो कमी तो वो प्रश्न है तो पूछ लो, क्योंकि आपका भी कुछ सुनना चाहिए, सब लोग आपको ही सुनाते हैं, तो भी सब सुनने के बाद देखने के बाद कुछ करने का दो तीन दिन रहे, फिर भी आपके मन में ऐसा कुछ रह गया, भाई जी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला, ऐसे कुछ है तो उठ के बताओ, क्योंकि 10 मिनट और है जी। अलग 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 सुनाओ, एक को सुनाओ, दो को सुनाओ, अगर सवेरे भाई मिला उसको सुनाओ, दिन में और किसी को सुनाओ, शाम को और को, एक ही को नहीं, अलग अलग। जितना आपका दान सबको पहुंचेगा ना, तो ऐसा उतना आपका बढ़ेगा, उनको भी मिलेगा, आपके भी इतने लोग दान के इतने लोगों को, ऐसे है ठीक। और आपके किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न प्रसन्न, क्योंकि नाम ही है ज्ञान मान सरोवर, है ना। इसमें तो स्नान करके गए और नंबर 1 6 महीने मार्च के बाद के, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद नंबर 1 ग्रुप ये है। इतने अभी तक किसको ही नहीं आया, हाँ अभी तक कोई नहीं, क्योंकि दुनिया में राजा भी चाहिए पानी भी चाहिए, हाँ राजा भी चाहिए पानी भी चाहिए। पानी मालेगांव में माला माल भी है ना, चल बाबा ने 2 दिन पहले कहा था, नाथ द्वारा में जाओ माल मिलता है और जगन्नाथपुरी में जाओ तो सिर्फ चावल ही मिलता है। हाँ तो माला माल कहाँ मिलेगा, जगन्नाथ आपके नाथद्वारा में मिलेगा ना, राजस्थान में मिलेगा ना, तो इसके लिए तो माला माल बनने वाले नंबर 1 ग्रुप सबसे पहले, इसके पहले कोई नहीं आया, किसी को आना भी नहीं था ना, आना जाना ज्ञान सरोवर में कोई आ जा नहीं सकते थे, बंद कर दिया था। तो नंबर 1 ग्रुप है तो आप नंबर 1 राजा हो गए, है ना, तो राजाओं के पास ऐसा कुछ होगा नहीं होना चाहिए ना जी। हाँ अभी पाठशाला खुली है, पाठशाला में आपको मुरली आती है, हाँ तो मुरली हफ्ते में 1 दफा जाके ले आते हो, 1 महीने में 1 दफा जाके ले आते हो, चलेगा। तो सेंटर से मुरली ले आते हैं ना, आते हैं ना सेंटर से, बहुत अच्छा है। और फिर सेंटर में मुरली लेने जाते हो तो खेती में जब सब्जी भी कुछ बनता है, बाबा को भोग लगाने के लिए भी देके आओ, दोनों काम हो गया, आपका भी भाग्य हो गया, सेंटर से रोज मुरली भी मिलती है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ हम मैं सेंटर से मुरली ले आता है ना, महीने में 1 दफा ले आओ, 1 महीने में सब मुरली आती है। हाँ फिर जब दूसरे महीने में जाएगा तो खेती से सब्जी भी कुछ तो लेके भी जाओ, दोनों काम हो गया, गुड गुड, ये अच्छा है, सबसे काम ये है। अपना भाग्य भी बनाया, बाबा भी आपका भाग्य बनाता है, देखो घर आप घर तक पहुंचाता है, ये अच्छा है। और हाँ हाँ इसलिए कहा है ना, जो झोली भरी अपने पास ही नहीं रखो, बांटो जा करके। तो कैसे बैठेंगे अभी जा करके, जो जो मिलेंगे सेंटर में भी बहन जी बोलेंगे आपने अनुभव सुनाओ, तो आप एक एक नोट करो कि मुझे आप मैं आज रोज आज के बाद रोज एक एक रतन बांटूंगा। तो बहन जी कोई पूछेगा कहां से लेके आएंगे, ज्ञान रतन मुरली से रोज लूंगा, एक रोज मैं सबको रतन बांटूंगा, एक रत्नागर बनूंगा, है ना, ऐसे हो सकता है। तो रोज मैं ज्ञान सुनाऊंगा, फिर कहो और किसने, रोज मैं योग करूंगा, ब्रह्मा बाबा जैसे बनूंगा, तो ऐसे एक एक क्लास का एक एक पॉइंट ले लो। तो बहन जी ये सब लेके आओ झोली भर करके, ज्ञान सुनो से बांट लो सबको, तब लोगों को भी लगेगा हाँ ये गया था बाबा के घर में, जवाहरत के घर में गया था, हीरे जवाहरत में, तो वहां से लेके आया है। तो ऐसे करना पड़ेगा ना, बांटना भी है। और किसी के मन में कोई दुविधा है तो बताओ, कोई प्रश्न है कि संतुष्ट, हाँ क्योंकि परी बन के जाना पड़ेगा ना, संपूर्ण बन के जाना, ज्ञान मान सरोवर पहला ग्रुप है। हाँ कोरोना का जो बीमारी आ गई उसके बाद से फर्स्ट ग्रुप है, तो आप ही नंबर 1 है, नंबर 1 राजा बनने वाले। हाँ तो इसके लिए भरपूर होके जाओ, कुछ कमी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज्ञान सुनने तक ठीक रहता है, करने जाओ तो होता नहीं है। जैसे आपको कहा कि अपनी अवस्था ऐसी होना चाहिए, भाई जी हम अवस्था ऐसे चाहते हैं, न चाहते गुस्सा आता है, न चाहते ऐसा होता है, तो इसलिए अवस्था बनाने की विधि बताया, सिर्फ आपको अवस्था बनाओ इतना ही नहीं कहा, अवस्था की विधि बताया। अच्छा फल चाहिए तो अपने आप नहीं, तो अच्छा फल चाहिए तो अच्छा बीज बोलो, अच्छा झाड़ होगा तो अच्छा फल लगेगा, है ना। तो अपने आप तो नहीं, बिना बोए हुए तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं दूसरों का चोरी करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कितना दिन मांगेंगे, आप बोलो अपनी अवस्था बनाओ। दूसरी अवस्था को देख करके खुश नहीं हो जाओ, इनकी अवस्था अच्छा है, ये अच्छा है। कल बाबा ने कहा था किसी के महिमा नहीं करो, बाबा ने बनाया है ना, किसी के प्रभाव में नहीं आओ, प्रभावित हो जाएंगे, अटैचमेंट हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। तो एक से लगाव रखो तो एक ही याद रहे, ठीक है। इस तरह का फिर भी मन में कोई दुविधा हो तो ऐसा है तो बताओ जी। अब आया निमित्त आत्मा, माना जैसी सेंटर। तो ये सेंटर की टीचर आपने हमने नहीं बनाया है ना। अभी दादी प्रकाशमणि बॉम्बे में थी, वहां टीचर थी सेंटर में, तो बाबा ने उनको वहां से बुलाए, तो बाबा के साथ दीदी और भी थे इधर, तो उनको बुला करके सारे यज्ञ के नंबर वन टीचर क्यों बनाया? या हमने और किसी ने नहीं बनाया? दादी किसने नहीं कहा उनको? किसने कहा? बाबा ने बिठाया। तो यहां भी टीचर किसने बनाया? आपने हमने किसने बनाया? नहीं, अगर टीचर बनाया निमित्त सेंटर में तो वो बाबा ने बनाया। अगर उन्होंने कुछ, उनके अंदर कुछ कमी गलती कुछ भी है वो जाने, उसने कहा मैं हिसाब किताब लूंगा उनसे। आप समझो टीचर नहीं देखना, आप बाबा की टीचर है, बाबा के निमित्त है, तो बाबा समझ करके उनका निमित्त। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा, अगर कुछ गलत भी हुआ मैं जिम्मेवार हूं, मैं ठीक कर दूंगा, मैं सुलझाऊंगा, क्योंकि मेरे नाम से हो रहा है। बाबा ने कहा ऐसा कहता है। अभी सेंटर की बहन जी भी क्या कहते, बाबा ने कहा। अगर उस बहन जी ने कुछ कहा हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो बाबा आप कहते थे बहन जी आपके, आप उनके द्वारा करते हो, ये गलत हुआ, मुझे सुलझा दूंगा, मैं ठीक कर लूंगा। तो निमित्त टीचर चाहिए, तब का सेंटर से मुरली लेना, कहीं भी मिलती है, मार्केट दूध कहीं भी मिलता है, लेकिन परमानेंट। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। बॉम्बे में तो एक भाई ने कहा, भाई जी मुझे सफेद कपड़े मधुबन जाने के लिए चाहिए। तो मैं जा रहा था, जाते समय देखा कपड़े बेच रहे, कपड़ा अच्छा, तो मैंने ले लिया। उसमें तो शर्ट का नहीं था, पैंट का था, तो वो ले लिया, हो गया। उसके बाद एक दुकान और शर्ट का भी चाहिए, तो कहां ले, दुकान परमानेंट दुकान दिखाई दिया, वहां जाके लिया, उसको दे दिया। उसने सिला करके मधुबन में एक दफा पहना और पानी में डाल के पैंट निकला, एकदम धागा धागा हो गया। तो हमने कहा ऐसे पकड़ा, कपड़ा तो अच्छा था। तब पता चला है कहां लिया था, जो परमानेंट दुकान से लिया था वो कितने सालों तक चला। ये रस्ते पर जो बेचते हैं तो वो चाइनीज माल के, और कुछ कहा तो पानी में डाल के निकालते ही खत्म, धागे धागे अलग अलग हो गया। तब कहा सामान वहां से ले लो, तब हमको समझ में आया। तो कल कुछ हुआ तो किसको पूछेंगे, वो तो है नहीं उधर, और रेगड़ी वाला चला गया, कहां से पूछेंगे उसको। हाँ, दुकान वाला अगर खराब हो गया तो उसको पूछ सकते हो, आपने ये दुकान खराब दिया देख लो, तो वो आपको अच्छी चीज देगा। इसलिए रस्ते पर कोई दूध बेच रहा है ले लो, कल कुछ मिस्टेक ठीक खराब हो गया तो किसको पूछेंगे। अगर परमानेंट दुकान वाले से दूध लेते हो, कल खराब हो गया तो उसको बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो। तो इसलिए कहा परमानेंट स्टेशन जो बाबा ने बनाया ज्ञान के लिए, कहीं कुछ भी कह, निमित्त टीचर है बनाया। तो टीचर अगर उनके अंदर भी कुछ कमी होंगी, वो देवता नहीं है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भी कैसा, ब्रह्मा में पतित था, बाबा ने बनाया ना, तो बाबा बना रहे उनको भी, उनकी कमी उनको बाबा सिखा रहा है, ठीक कर रहा है। रोज मुरली सुनाते, ठीक करते करते नंबर वार होंगे ना, तो वो कमी उनकी। हमें डालते समय भंडारी में हम डाल रहे हैं, भंडारी से क्या हो रहा है वो आपको नहीं, आपका जमा हो गया। तो ये निमित्त की नॉलेज चाहिए, ठीक है। और बताओ, और किस मन में है? हाँ नहीं, चलन तो आप रॉयल रखना चाहते हो, लेकिन आदत बने रहे। इधर से आप जाएंगे किचन, कहीं भी देख थूक दिया, आदत है। तो आप कहते हो देवता ऐसे नहीं करते, फरिश्ता ऐसे नहीं करते, कोई देखेगा तो कहेगा, आदत बनी। वो रॉयल कैसे होंगी? हाँ, स्मृति चाहिए, ज्ञान चाहिए। नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, इधर उधर नहीं देखते हैं, फरिश्ते से चलते, इधर उधर थूकते नहीं, इधर उधर फेंकते नहीं कुछ। तो वो ज्ञान स्मृति होंगी तो आचरण होगा। अगर स्मृति नहीं, बहुत जन्मों की आदत थी, तो वही काम करते, न चाहते हुए होता है कि आदत बनी है। तो आदत को चेंज करना चाहते हो तो स्मृति लब्धा, स्मृति, स्मृति में एक चीज कहा, सवेरे उठते ही एक स्मृति दे दो, तो मैं कौन, मैं परमधाम से आया, हमारा घर वहां है, हम यहां मेहमान है, थोड़े दिन है, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, सवेरे याद, स्मृति उठते ही, मैं परमधाम से आया हूं, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये रोज याद दिलाएंगे, जैसे बच्चों को रोज याद दिलाते पढ़ाते उनको, तो ऐसे अपने आप को पढ़ाएंगे, संस्कार डालना पड़ता है। नहीं तो आपको पूछेंगे, भाई बहन जी कहेंगे नहीं मैं माता जी हूं, भाई जी कहेंगे कोई आपको नहीं मैं माता जी हूं, तो याद है, तो ऐसे नेचुरल स्मृति, इसके लिए रोज पढ़ाना पड़ता है। तो अगर यह स्मृति में रहेगा, फिर वो स्मृति सदा रहना चाहे, रहती नहीं है, तो उसकी विधि बताया। तो मुरली, आत्मा देखो, आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, कैसे देखे, तो उसकी विधि, तो अगर मुरली सुनिए, मुरली के पॉइंट सुनाते हो, तो ये पॉजिटिव थॉट है, शुभ विचार है, तो आत्मा शुभ है, तो आपके अंदर इनको देखे, इनको ज्ञान सुनाना चाहिए, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि अपने आप आएंगी। तो अभ्यास ऐसे करना पड़ता है। तो औरों को आपके मुख से सवेरे से रात तक सिंपल आत्मिक दृष्टि, मन को ठीक करना चाहते हो, अवस्था ठीक करना चाहते हो, सबका एक ही तरीका वो अपना लो, कि ब्राह्मण उसको कहा जिसके मुख से ज्ञान रतन निकलता है। तो सवेरे से रात तक हमको कम से कम 5-10 लोगों को अब मेरे मुख से आज के मुरली के पॉइंट से एक काम करो, बस देखना आपकी कितना भी खराब वृत्ति हो, कितना भी खराब मन हो, अवस्था हो, आदत हो, वो सब परिवर्तन, ये ज्ञान वो है, तब का ये जादू का ज्ञान है, ये चमत्कार करेगा, तो मनुष्य का ज्ञान नहीं है, भगवान देने वाला है ज्ञान, ये सब परिवर्तन करेगा। सिर्फ एक ही काम करो, योग करो, ये करो, बहुत कुछ करना चाहते हैं, समय नहीं है, योग लगता ही नहीं है, भाई जी योग में बैठो नींद आ जाती है, चलो तो ये सब छोड़ दो, जो हो सकता है वो तो करो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, भाई जी हो सकता है, कर सकते हैं ना, योग करो, नींद आ जाता है, उठ नहीं सकते, बहुत कुछ है, तो ये तो हो सकता है, इसमें कोई तो सहज है, वो काम करो, ठीक है। ओम शांति। हाँ। बिजनेस में बढ़ाए या समय को देखे, हाँ बिल्कुल, बिजनेस बढ़ाओ, अरे बिजनेस कम नहीं करना, एक दुकान है तो 4 दुकान खोलो, कम नहीं करो, लेकिन एक लक्ष्य रखना, सवेरे 9 बजे से रात को शाम को 8 बजे तक बिजनेस करो, सवेरे 9 बजे, सवेरे उठ करके ज्ञान योग करके 8 बजे के बाद दुकान भी खोलो, 8 बजे के बाद खोलो, शाम को 6 बजे तक खोलो, बंद रखो 6 बजे के बाद, 1 घंटा आके फ्रेश होके 8 से 9 आधा घंटा ज्ञान योग करके फिर खाना खा लो, ऐसे नहीं रात को 12 बजे तक करते रहो, है ना, ये ध्यान देना, बिजनेस कम नहीं करना, बिजनेस चाहिए, करना कमाई चाहिए बाबा को, सिर्फ ज्ञान ही नहीं धन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, धन नहीं तो कहां से आएगा, वो भी चाहिए, कुछ कम नहीं करो किसी के लिए, पता है कल विनाश होने वाला है, आज नहीं खाना खाएगा, खाएगा, आज भी चाहिए, तो इसलिए कोई चीज कम नहीं करना, लेकिन व्यवस्था करना जी। अभी बहन जी ने एक बहुत अच्छे प्रश्न पूछा कि बाबा कहते परख लो, सीता को तो ये पता नहीं था रावण था कि साधु था, पता नहीं था, तो फंस गए ना, अभी हम समझे ये भाई जो बोल रहा है कुछ कहता है सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो कैसे मैं परखू, अभी बहन जी ने पूछा, कोई झूठ बोलता है पता नहीं चलता, सही बोलता है ऐसा लगता, हम फंस जाता है, फिर लोग कहते रहे ये गलत बोल करके इन्होंने ऐसा किया, तो मैं कैसे परखू इनको, ये मां बहन जी सही बोल रही कि गलत बोल रही है, ये भाई जो कुछ कह रहा है सही है कि गलत है, तो परखने की विधि बताओ, किसी के पास है, हाँ अभी आया सिंपल तरीका, आज से सिंपल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कभी किसी से मिलो, कोई भाई से मिलो, बहन जी से मिलो, कोई मिलती है बात करती है, तो एक सेकंड दृष्टि दे देखना, लेकिन स्मृति रहे मैं शिव बाबा का बच्चा समझकर उनको देखना, अगर बहन जी दृष्टि हिलाती नहीं है तब समझना दिल साफ है, वो जो कहते वो करो, अगर बात करते नीचे इधर उधर देख लिया, दाल में कुछ काला है, संभाल के बात करना, ये परख कलयुग की दुनिया में आज परखने की तरीका। कैसे परखे? आपने कहा बहन जी कहती है झूठ बोल रहा है सर, कैसे समझो? मैं हमको समझते समझ सही बोल रहा है ऐसा लग रहा है, विश्वास है सही है, कैसे समझे? तो परखने की दृष्टि देना पड़ेगा ना आपको। तो इसलिए विधि कोई भी हो, किसी को भी मिलते हो, तब बाबा ने दृष्टि का वैल्यू दिया। खाना भी हो, बहुत अच्छा खाना दे रहे, पता नहीं क्या क्या, दृष्टि, दृष्टि के अंदर स्मृति चाहिए। सिर्फ दृष्टि काम नहीं करेंगे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। कोई किसी से मिलते हो, अगर वो दृष्टि देखते ही आंखें इधर उधर करता है, समझना दाल में कुछ काला है, संभाल के बिजनेस करो, व्यवहार करो, बात करो। अगर देखते हैं बात करते समय दृष्टि हिलाते हैं, दृष्टि से दृष्टि मिलाती है, साफ दिल वाला दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तो वो कुछ भी कह रहा है सत्य कहता है, उसका दिल साफ है। समझ में आया? तो कैसे सही कैसे गलत समझे परखना पड़ेगा ना। तो वो हमको लगता है जो कह रहे सही कह रहे हो, बाद में लगता है ये गलत है, तो क्या करे? तो उसका हम निवारण बताना पड़ेगा ना, तरीका बताना पड़ेगा ना। तो ये तरीका दृष्टि, कोई भी कहीं भी जाओ, बिजनेस वाला दुकान वाला भी हो, एक मिनट आप दृष्टि देना उसको, लेकिन ये स्मृति रहे। अगर वो दृष्टि हिलाता है तो कलयुग में भी आज भी हमको कोई ऐसा तरीका चाहिए ना। नहीं तो सीता देखो, रावण इतना बड़ी राजा जनक की बेटी, राम श्री राम के धर्म पर, उसको वो परखने से कि हम कैसे परखेंगे, हम कौन है उनके सामने? तो लेकिन शिव बाबा आकर के ऐसे एक विधि बताता है, तो ये परखने की शक्ति चाहिए। ये हो सकता है कि कठिन है? हाँ, व्यवहार में आते हो, भाई जी आता है सदा, रोज आता है, बहुत अच्छा है। वो कहता है भाई जी घर में कोई बीमार है, मुझे 100 रुपया दे दो। बाबा का बच्चा रोज सेंटर में भी आता है, अब उसको कोई बीमार नहीं था, उसको और कुछ करना था, अब हमने सोचा रोज बाबा का है समझ के दे दिया, कल देता ही नहीं है, अभी क्या करे? नहीं देवे, मदद नहीं करे, प्रश्न आता है ना। तो ऐसे तब परखने की शक्ति चाहिए। अभी आपको ऐसा आईना देना पड़ेगा ना, देख के देख लो, दे दो। कैसे देखो? तो देखने का ये तरीका कोई भी हो। अभी कहते शंकर पार्टी है, ये पार्टी, कुछ भी खाओ, कोई ज्ञान सुनाता है, ठीक है, पूर जाने, कैसे कहा आपने? आप परखो, परखने की ये तरीका। और दृष्टि से दृष्टि वही मिला सकता है, सच्चे दिल तो वाला ही दृष्टि मिला सकता है। मैं तो स्थिर दृष्टि नहीं हिलती है, इधर उधर करेगा। मंजूर? समझ में आया कैसे परखना चाहिए? हाँ, लेकिन क्या हो रहा है, तो उसको वो पता नहीं चल रहा मैं झूठ बोल रहा हूं। हाँ, सबको ठीक लगता है। हाँ, नुकसान, वो उसको समझ नहीं है अभी, वो समझ नहीं है मैं जो बोल रहा हूं ये झूठ है, उसको लगता है मैं सही बोल रहा हूं। हाँ, अगर पता है तो उसको अगर कभी ठोकर लगना चाहिए, कब कुछ होना चाहिए, तो वो पता होने के अभी तक वो गिनती नहीं करता है। तो जब अपने कपड़े को देखेगा, अरे आज मैंने झूठ बोलने के कारण ये हुआ, तब जाके उसको शॉक होगा। तो टू मच टू लेट हो गया, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अगर उसको झूठ है ये दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एक दिन मैं उदाहरण बताऊं इसके लिए। देखो, एक व्यक्ति था यहां ही, तो उसकी आदत थी कोई भी जो ना गलत शब्द बोल देता था, इंसल्ट करता था, बहुत पुराना बाबा जैसा, बाबा के लेवल का पालना लिया हुआ, एकदम नंबर वन बाबा। आज बाबा ने देखा नहीं हमने तो ब्रह्मा बाबा का जैसे ही, तो मैंने देखा बहुत लोगों सबको करता है, आदत बनी। एक दिन अकेला मिल गया, हमने कहा इसको चेंज कैसे करें? तो अकेला हमने कहा बाबूजी आपको देखो तो ब्रह्मा बाबा याद आता है, आपने ब्रह्मा बाबा की पालना लिया और आपको देखते बाबा जैसे लगता है, तो आप कुछ भी कहते हो तो आप कल उनको ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे थे, अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। भाई जी आपकी मजाक है, मिरवा मौत, वो चूहे का मौत है, बिल्ली तो उसके साथ खेल रही है, आप तो मजाक है, लेकिन सबके सामने बैठे थे, उसके सामने अपने ऐसे से बोल दिया। नहीं नहीं वो मैंने, आप सीरियस नहीं ले लो, वो मेरी मजाक, मजाक आपके लिए है, लेकिन सुनने वालों को आप कौन? उसको तब उसको समझ में आया। कभी कभी समय लेकर आईना दिखाना पड़ता। हम कहते हैं झूठ बोल रहा है, वो मानता नहीं है, समझता नहीं, कोई परिस्थिति देखनी पड़ती, उसकी अवस्था अच्छी है, अच्छी तरह से बात कर रहा है, तब देखो कल आपने ये जो कहा ना ये सही कहा, दिखाना पड़ेगा। तब उसको पकड़ा, तब वो महसूस करता है हाँ ये मैंने झूठ बोला। आपको दिखाना पड़ेगा एक दिन, तब तक मानता नहीं है मैं सही बोल रहा हूं, तो उसके लिए समय लगता है। तब कहा सत्य झूठ के लिए, सत्य का कोई छुपा नहीं सकता है, सूर्य को बादल कितना भी आने दो, दो मिनट के बाद हट जाएंगे, है ना, तो सत्य का सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता है, लेकिन समय लगता है। सत्य जिद करने नहीं जाता है, झूठ वाला बहुत जिद करेगा, तो उससे उसका नुकसान है ही है, दुख है उसको, लेकिन वो आज नहीं अंत में पता चलता है उसको, तब टू लेट, अरे मैंने क्या किया, तो क्या कर सकता है, तो कुछ भी, कोई नहीं कुछ कर सकता है, समय चला गया, आदत बन गई। इसकी कहानी भी आपने सुनी होंगी, तो एक बेटे को जेल में डाला, तो उसको अंत में फांसी हो गई, तो उसको पूछा, तो उसने कहा मुझे मां से एक मिनट बात करनी है, तो मां को बुलाया, मां को कहा मैं कान में बोलना चाहता हूं, तो कान ही काट लिया बेटे ने, क्यों, कि बचपन में मैं हाथ से उठा के खाता था, तब आपने मुझे ठोका नहीं, चोरी करना कहां से आदत डाली, तो झूठ बोलने की एक बार आदत बनी, फांसी तक गया, तब कुछ टू लेट, अंत में पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकता है। तो यहां जिसको उसको अगर मेरी रहम दिल है, उसके प्रति मेरे बाबा के तहत रहम है, दया है, तो एक दिन समय देखना, जब अच्छे मूड में बात करता है, तब मुझे ऐसी कोई सीन उसको दिखाना पड़ेगा, तब वो मानेगा। अगर अकेले में तो उसकी भी इंसल्ट नहीं होना चाहिए, और उसकी मूड देखना चाहिए, अच्छा खुशी में है, ऐसे समय पर ऐसी कोई एक चीज दिखाओ, तब वो रियलाइज करने, तो मनुष्य रियलाइज नहीं करता है, तो ये मुश्किल है। समझ में आया क्या करना चाहिए जी, ठीक है, और रह गया हाँ हाँ अभी आप या समझा करप्शन की बात आती है आपकी ऑफिस में, तो सबसे करप्शन लेकर के बड़े ऑफिसर को देना पड़ता है। आप ज्ञान में चलते हो, आप कहते हैं मैं ये काम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कल पता चले कल आपको ट्रांसफर करके कहीं जंगल में डाल देगा, तो क्या करें, हाँ आप भी ले लो, लेकिन आप उस पैसे को नहीं यूज करो, आप उनको दे दो, क्योंकि उस वातावरण में आपको करना पड़ेगा, करके आप यूज नहीं करो उसका, तो आप उनको देना, हर महीने उनको देना है, नहीं देंगे तो वो आपको चेंज कर देगा, तो आप लेकर के उनको दे दो, आप यूज नहीं करो, क्योंकि वातावरण ऐसा है, नहीं तो आप टिक नहीं सकेगा। तो परिस्थिति कैसी है, फिर कभी ऐसे एक दो तीन दफा करके फिर एक दफा उनको समझाना, देखो हमारा, हम आश्रम में जाते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, तो ये चीज मेरे से आप गलत करा रहे हो, नहीं नहीं आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मैं ट्रांसफर कर देता हूं। वो कहेगा मेरे ऊपर और भी है, ये कलयुग दुनिया है, ऐसे है, तो जैसी वातावरण है उसको ले कहा। श्रीमत भी तीन चीजें हैं, व्यक्ति, परिस्थिति और वातावरण, इन तीनों को देखकर श्रीमत यूज करना है। श्रीमत है जैसे ब्रह्मा जग, वो था ब्रिजमोहन भाई और रमेश भाई, तो बाबा के संत, उसने वो गवर्नमेंट ऑफिसर था, तो बाबा को उसने पूछा, बाबा मुझे चाय पीना पड़ता है बाहर का, बच्चे आप पी लो, अरे आपको बाहर का चाय पी लो का, तो दूसरा भाई गया, बाबा ने कहा नहीं तुमको नहीं पीना है, बाबा आपने उसको कहा, हाँ वो कौन, वो उधर नौकरी करता है, अगर नहीं मानेगा तो उसको निकाल देंगे, आप यहां ऑफिसर हो, आपका अपना घर है, मालिक हो आप चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, आपके हाथ में है, जहां आप अधिकारी हो वहां ऐसे कर सकते हो। तो श्रीमत भी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग है, एक ही जैसे सबको नहीं हो सकता है। तो भी अगर आपके नियम ऐसा है कि कानून ऐसे गलत बन गया, तो कोई पूछेगा साहब ये ऐसा है, हाँ जैसे उन्होंने कहा, जैसे लिख के आया वो सही है, हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, नहीं तो आपको तो कल ऐसे हुआ है, अनुभव से बताता हूं। तो इसलिए कहा तो कलयुगी दुनिया है, तब बाबा ने कहा इसमें ज्यादा फंसना नहीं, लेकिन सदा नहीं तो उससे भी युक्ति करो। तो वो कैसे करो मैं, तो उसके लिए आपको बाबा से बात करेंगे तो बाबा आपको युक्ति देगा। एक दिन उसको समझाएगा, वो भी देखेगा हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, इसको इसके द्वारा हम पाप करा रहे है ना। एक दफा दो दफा करना पड़ता, इसी दफा उसको आप मिलेंगे समझाएंगे तो वो भी कहेगा ठीक है, आप नहीं बोलो, आप आगे भेज देना, उनको पूछो, मुझे पता नहीं उनको पूछो, तो आपके अंदर युक्ति आएगा। नहीं तो वो जब कोई आएगा दूसरे समय आप उस कुर्सी पर नहीं रहेगा, कि दो मिनट के बाहर जाएगा। तो कुछ युक्ति करनी पड़ती है संसार में, इस कलयुग दुनिया में युक्ति भी कभी मुक्ति नहीं। अभी युक्ति क्या, युक्ति के भी दो अर्थ है, जिस बोल या कर्मों से औरों को नुकसान नहीं होना चाहिए ना दुख होना चाहिए उसका नाम युक्ति। झूठ बोला आपने लेकिन उस झूठ से उसको कोई नुकसान नहीं है ना उसका कोई दुख नहीं है, तो ये युक्ति है। सत्य वो है, झूठ वो है, आपके बोलने से उसको नुकसान हुआ, उसको दुख हुआ, ये पाप है। अगर झूठ बोलने के बाद भी गलत बोलना पड़ा आपको तो उससे उसको कोई नुकसान नहीं ना उसको कोई दुख है, इसका नाम युक्ति। इस कलयुग में युक्ति से मुक्ति है, हर कर्म के पीछे है। ठीक है, ओम शांति। देखो बहुत प्रश्न है, पहले मैं पहले से पूछा नहीं, पूछ लो, आपके ऊपर है और साउंड वालों के ऊपर है। जी हाँ, जब बाबा कहता है अगर कोई पानी पीन मांगने आया, आप उसने उसको खाना दे दिया आपको, उसको तो पानी चाहता, वो संतुष्ट नहीं होगा। अगर कोई कोर्स करने आता है सेंटर में या घर में कहीं भी ज्ञान सुनने आया, तो अगर आपकी अवस्था, वो परखने की चीज बताए आपको, अगर आपको याद है मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बाबा ये आपका बच्चा आया है, इसको क्या देना वो आप दे दो, तो वो समझते हो, तो वो उसको जो चाहे वो आपको संकल्प आता है, वो संकल्प कैच करता है। तब का स्मृति आपके चाहे कोई भी आता है, कोर्स करने आए या किसी को मिले रस्ते पर भी, इनको ज्ञान सुनाना चाहे ऐसे लगा, तो आप एक दिन बाबा ये आपका बच्चा है। मैं आपको अपना अनुभव बता, अभी दो साल पहले हम बॉम्बे में गए, बॉम्बे में एक जगह पर नरीमन पॉइंट करके तो वॉकिंग करते हैं, तो बहन जी शाम को हमको वॉकिंग करने लेके गए, भीड़ लोगों के बहुत है, तो मैंने देखा आधा घंटा हम वॉकिंग किया, इतने लोग है इसमें से एक भी ब्रह्मा कुमारी को नहीं जानता है। हम दो बहन जी भी थी, हम भी था, बैच पहना, कोई एक भी भाई जी ओम शांति कहने वाला एक भी नहीं, मैंने इस यहां अभी किसी को ज्ञान ही नहीं है, इतने लोग अज्ञानी हैं। इतने सोचते ही लाइट जल गई रस्ते की लाइट जल गई, 7 बज गए, तो हमने कहा, विचार आया जैसे ये लाइट जलती है, सब लोग जा रहे, कोई लाइट के तरफ नहीं जा रहा है, किसी को अगर कुछ काम करना है वो लाइट के खंभे के नजदीक आता है तो यूज करता है, लाइट तो जल रही है, कोई ले नहीं रहा है, वो हर एक अपने अपने काम में है। इसे सोचा, तब तक एक बहन आके सामने खड़े हो गई, भाई जी ओम शांति, मैं पुलिस आर्मी में कमांडो है, कोई एक मिनिस्टर आने वाला है, मैं पुणे से इधर आई हूं एक दिन के लिए, मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं क्या ज्ञान सुनती हूं। तो देखो तुरंत मिल गया, और फिर उसने कहा, मैंने कहा शाम को मैं आप सेंटर में आऊं, नहीं भाई जी मेरे सारी रात ड्यूटी है और कल मुझे वापस जाना है, फिर भी अगर कल रुकेंगे, कल मैं दिन में 2 बजे तक हूं, आप सवेरे आना, नहीं मुझे सवेरे ड्यूटी है। देखा तो सवेरे वो 4 बजे सेंटर में पहुंच गई, क्योंकि वो कोई मिनिस्टर आने वाला आया नहीं, और 2 बजे तक सेंटर में रही। तो आपका संकल्प, मेरा संकल्प था, इतने लोग है एक भी ओम शांति करने वाला नहीं है, एक भी हमको पहचानता नहीं, इधर सामने आया, तो आपके संकल्प खींचता है, और भी कोई होंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ी, तो खींचता है शुभ संकल्प। तब का जैसी आपकी स्मृति वैसे आकर, मैंने सेंसर लगाओ कहा ना मोबाइल के अंदर, ऐसे अगर आपके अंदर अच्छे विचार है, अच्छे लोग आपके सामने आएंगे, ये चुंबक है, ये मन की पवित्रता है। मन की शादी नहीं किया ये सब बाद में, मन की पवित्रता, मन के अंदर बाबा ये सब आपके बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चे आपके सामने आएंगे। समझ में आया, तो आपको टचिंग होगा इनको क्या सुनाना चाहिए और वही बात निकलेंगी, ये तरीका है। ओम शांति। क्योंकि हमने देखा हर जगह अपना प्रश्न पूछो, पहले डरते हैं, क्या सो, लेकिन एक बार प्रश्न शुरू करो, प्रश्नों की भीड़ लगती है, हर एक प्रश्नों से भरा हुआ है। कितना भी ज्ञान सुनाओ वो यहां तक ही है, क्योंकि हरेक के मन में जैसे ये कैसे यूज करो, ज्ञान मिला वो यूज करने का तरीका चाहिए। तो देखा हरेक के अंदर हजार, अभी भी देखूंगा आप, और एक दो घंटा बैठो तो भी आपके प्रश्न खत्म नहीं होंगे, एक के एक प्रश्न निकलेगा, एक शुरू कर अभी भी एक भाई उठा फिर बैठ गया, तो प्रश्न बहुत है। तो जानता हूं क्योंकि ज्ञान सुनने से जाता नहीं है, नहीं तो हमारे फिर टीचर आएंगे कान पकड़ेंगे, हमारे भी टीचर है, देखो आ गए, लकड़ी है कि नहीं पता नहीं है नहीं उनके हाथ में लकड़ी है कि मोबाइल है पता नहीं है, लेकिन टीचर आ गई हमारी, इसलिए सावधान रहना पड़ता है ना, ओवर टाइम हो गया नहीं टीचर के हमको भी डर, हमको भी किसी को भगवान की डर है, हमको भी हमारे ऊपर भी कोई टीचर है, डरना पड़ता है ना। अच्छा ये तो उल्टा हो गया सुना, हमारे टीचर आ गए तो हमको डर होना चाहिए, टीचर का भी टीचर है देख लो, तो दोनों का टीचर शिव बाबा है, शिव बाबा को डरना पड़ेगा ना, समय की भी मर्यादा है। ओम शांति।